दिन भर 25 अगस्त रविवार। सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। बारिश और नम आंखों के बीच अरुण जेटली को अंतिम विदाई। बताएंगे आपको भारत प्रशासित कश्मीर के क्या हैं ताजा हालात और क्या अनुच्छेद 370 खत्म करने से कश्मीर समस्या खत्म हो गई है।
जी नहीं, मैं ये तो नहीं मानता। इतना सहज अगर अंत होता करना तो पहले ही हो जाना था। लेकिन
पीवी सिंधु बैडमिंटन की विश्व चैंपियन बनी।
लास्ट टाइम आई लॉस्ट इन द फाइनल्स, बिफोर ईयर आल्सो आई लॉस्ट इन द फाइनल्स, सो इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट विन फॉर मी एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी।
खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार गुरप्रीत सैनी से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का दिल्ली के निगम बोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अरुण जेटली के बेटे रोहन ने उन्हें मुखाग्नि दी। जेटली के अंतिम संस्कार के वक्त बारिश हो रही थी। उन्हें अंतिम विदाई देने गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू समेत बीजेपी के कई नेता निगम बोध घाट पहुंचे। जेटली का लंबी बीमारी के बाद दिल्ली के एम्स अस्पताल में शनिवार को निधन हो गया था। वो 67 साल के थे। भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने स्विट्जरलैंड में चल रही विश्व चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया। एक तरफा रहे मुकाबले में उन्होंने जापान की खिलाड़ी नोजोमी ओकुहारा को 21-7 के अंतर से हरा दिया। सिंधु बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि G7 देशों के नेता ईरान परमाणु समझौते को लेकर मतभेदों के बावजूद ईरान के मुद्दे पर साझा रुख अपनाने के लिए तैयार हो गए हैं। मैक्रों ने कहा कि समूह का कोई भी देश ये नहीं चाहता कि ईरान के साथ परमाणु हथियार हों। उन्होंने कहा कि सभी देश क्षेत्र की शांति और स्थिरता को खतरा पहुंचाने वाले कृत्यों से बचने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान के लिए किसी खास संदेश पर कोई चर्चा नहीं की गई। मैक्रों और ट्रंप दोनों ने ही अपनी वार्ता को शानदार कहा है। इस बीच आ रही एक खबर के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री जावेद जरीफ को नॉर्वे की एक बैठक में शामिल होने के लिए ले गया विमान अब बियरिट्स में लैंड हुआ है, जिससे ईरान के मुद्दे पर वार्ता के किसी नतीजे पर पहुंचने की अटकलें लगाई जा रही हैं। मैक्रों ने यह भी कहा कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी व्यवस्था बनाने की वकालत की है जो फेसबुक और अमेज़न जैसी डिजिटल कंपनियों पर टैक्स लगा सके। ब्रिटानी प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि ब्रिटेन का बिना समझौते के यूरोपीय संघ से अलग होना अब एक करीबी मामला है। इससे पहले वो कह चुके हैं कि इसकी संभावना 10 लाख में से एक के बराबर है। G7 सम्मेलन के दौरान बीबीसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि समझौता होगा या नहीं, ये ब्रिटेन के यूरोपीय संघ में दोस्तों और सहयोगियों पर निर्भर करेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि ब्रिटेन अक्टूबर के अंत में यूरोपीय संघ से अलग हो जाएगा, भले ही समझौता हो या ना हो। उद्योग जगत के नेताओं, बैंकों और लीक हुए सरकारी दस्तावेजों ने चेताया कि अगर ब्रिटेन बिना समझौते के यूरोपीय संघ से अलग होता है तो इसका ब्रितानी अर्थव्यवस्था पर भारी असर होगा। जॉनसन ने कहा,
बीते कुछ दिनों में ब्रसेल्स और अन्य यूरोपीय राजधानियों में एक प्रकार का एहसास पैदा हुआ है। आप जानते हैं कि ब्रिटेन के लिए समस्या का रूप क्या होगा। मुझे लगता है कि ये करीबी मामला होगा, लेकिन अहम ये है कि हम बिना समझौते के बाहर आने की स्थिति को लेकर तैयार रहें। हांगकांग की दंगारोधी पुलिस ने जून में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन शुरू होने के बाद से पहली बार पानी की बौछार करने वाली मशीनें तैनात की हैं। इसे पुलिस की रणनीति में बदलाव भी माना जा रहा है। अवरोधक हटाने और प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। वहीं प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की। इससे पहले पुलिसकर्मियों के परिजनों ने एक शांतिपूर्ण रैली निकाली और हांगकांग में जारी संकट का राजनीतिक समाधान निकालने की अपील की। पुलिस की भी अपने व्यवहार को लेकर आलोचना हो रही है। प्रदर्शन 12वें सप्ताह में पहुंच गए हैं, लेकिन इस संकट के तुरंत खत्म होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। बांग्लादेश में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों ने म्यांमार से जबरदस्ती निकाले जाने के 2 साल पूरे होने पर रैली निकाली है। कुछ लोगों ने प्रार्थना की जबकि कईयों ने बैनर दिखाए। इन बैनरों पर रोहिंग्या लोगों ने इस दिन को नरसंहार यादगार दिवस बताया है। इस बीच बांग्लादेश का गुरुवार को शरणार्थियों को वापस भेजने का प्रयास नाकाम हो गया। किसी भी शरणार्थी ने वापस लौटने पर सहमति नहीं दी है। रोहिंग्या अधिकार कार्यकर्ता हमीदा बेगम का कहना है कि रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ अपराध करने वालों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। हमारे नेता मुहिबुल्ला और मैं जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र गए। हमने वहां अपनी समस्याएं बताई थी। रोहिंग्या लोगों को पक्ष में हमने कहा था कि म्यांमार में हमारे लोगों का उत्पीड़न और बलात्कार हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने संकट के समय में चरमपंथी सामग्री होस्ट करने वाली वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाने की योजना का ऐलान किया है। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है। आप सुन रहे हैं शाम की सभा। दिन भर शाम 7:30 से 8:30 बजे तक पूरे 1 घंटे का प्रसारण रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी इस समय लाइव। मेरा नाम है संदीप सोनी। भारत के पूर्व वित्त मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली का दिल्ली में आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अरुण जेटली का लंबी बीमारी के बाद दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में शनिवार को निधन हुआ था। अरुण जेटली को आज आखिरी विदाई देने के लिए उनके परिवार के सदस्यों के अलावा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के कई बड़े नेता मौजूद थे। वहीं मौजूद थे बीबीसी संवाददाता सलमान रावी। सुनिए उनकी ये रिपोर्ट।
दिल्ली के निगमबोध घाट पर जैसे ही अरुण जेटली का पार्थिव शरीर पहुंचा, पूरा समा नारों से भर गया। कई आंखें थीं जिनसे आंसू भी छलक रहे थे और कई आंखें नम थीं। मंत्रियों, अफसरों और पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुजूम तो था ही, मगर विपक्ष के लोग भी अरुण जेटली को अंतिम विदाई देने निगमबोध घाट पहुंचे। इससे पहले अरुण जेटली के शव को भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में रखा गया ताकि पार्टी के कार्यकर्ता और आम लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकें। यहां मौजूद उनके करीबी मित्र रह चुके सुहेल सेठ कहते हैं,
सबसे प्यारा दोस्त, और मैं कल नहीं था दिल्ली में तो मुझे, और मैं जब सुबह लैंड किया और घर गया, घर से वो निकल चुके थे, तो इसलिए यहाँ हूँ।
आप काफ़ी भावुक नज़र आ रहे हैं, आंखों में आंसू हैं।
पुराने दोस्त हैं, अच्छे मित्र थे, अच्छे इंसान थे। मेमोरीज इतनी है ना कि आप मेमोरीज को, यू जस्ट वांटेड टू रेस्ट एंड सेवर एंड शुक्रिया अदा करना चाहिए भगवान का कि ईश्वर का कि एक ऐसा मित्र, एक ऐसा इंसान हमारे देश में पैदा हुआ और हमें नसीब हुआ दोस्ती निभाने के लिए।
योग गुरु बाबा रामदेव भी अंतिम दर्शन के लिए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पहुंचे।
आदरणीय जेटली साहब जैसे महापुरुष युगों के बाद आया करते हैं। भगवान ने उनको एक अप्रतिम प्रतिभा के साथ घड़ा। उनका वैयक्तिक जीवन, सामाजिक जीवन, उनका राजनीतिक जीवन हम सब के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है।
इसके अलावा चाहे सत्तारूढ़ दल हो या विपक्ष, सभी नेता अरुण जेटली के निधन से आहत दिखे। वरिष्ठ कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा भी इनमें से एक हैं।
देखिए, अरुण जेटली जी एक कद्दावर नेता थे, एक प्रभावशाली वक्ता थे और बहुत कुशल सांसद थे, और मंत्री के रूप में भी उन्होंने जो काम किया वो सराहनीय है। चाहे वो नेता विपक्ष थे या देश के मंत्री थे, दोनों उसमें पोजीशंस में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेता और अफसर ही निगमबोध घाट पर मौजूद थे। जेटली से जुड़े रहे सीलमपुर के रफीक बाबा भी इनमें से एक हैं।
मेरा नाम खालिद बाबा है और मैं यहाँ दिल्ली से ही सीलमपुर से बिलोंग करता हूँ, और आज हम अरुण जेटली जी के अंतिम संस्कार में आए हैं। बहुत अच्छे इंसान थे और बहुत अच्छे से, कोई भी चला जाता था बहुत अच्छे से बोलते थे। अल्लाह ताला ईश्वर उनको, उनकी आत्मा को शांति दे, इसलिए हम दुआ करते हैं।
पूरे राजकीय सम्मान के साथ अरुण जेटली को अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पर भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, गृह मंत्री अमित शाह, लाल कृष्ण आडवाणी सहित भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेता और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी शामिल थे। सलमान रावी, बीबीसी, निगमबोध घाट, दिल्ली।
दिवंगत अरुण जेटली को अंतिम विदाई देने वालों में कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल भी शामिल थे। बीबीसी संवाददाता सलमान रावी ने उनसे बात की।
ये बताइए कि आप कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर या इंडिविजुअल दोस्त?
देखिए, ऐसा है कि जब ऐसे वाक्यात आते हैं जिंदगी में तो वो किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता।
कुछ मेमोरीज चूंकि आप लोगों ने साथ बिठाया कोर्ट में,
हमारे दोस्त थे, पुराने दोस्त थे, हमने कई काम हमने इकट्ठा किए, कई केस हमने इकट्ठा लड़े और राजनीति में भी इकट्ठा रहे, हालांकि हम अलग पार्टी में थे।
कभी कभार वो कहते थे कि आप कहते थे कि वो गलत पार्टी में है।
नहीं, कभी वो तो ऐसे बातचीत में कह देता है आदमी, गलत या सही पार्टी है तो जनता तय करती है, लेकिन हमारे जो व्यक्तिगत संबंध है वो बहुत गहरे थे। ये बहुत, मैं समझता हूँ कि उनके साथ अच्छा नहीं हुआ, इस छोटी उम्र में चले जाना बहुत
पार्लियामेंट में एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन जब वो थे, आप सत्ता में थे,
बहुत ही बढ़िया उन्होंने अपनी भूमिका निभाई और विपक्ष के नेता के होते हुए उन्होंने जो भूमिका निभाई वो शायद ही किसी ने निभाई।
ये थे कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल। हमारे वरिष्ठ सहयोगी रेहान फजल ने वरिष्ठ पत्रकार अजय सिंह से बात की जो 20 साल पहले अरुण जेटली को लंच के लिए ताज मानसिंह होटल लेकर गए थे। सुनिए अजय सिंह ने उन दिनों को किस तरह याद किया।
बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य था वो लंच विद बीएस कॉलम एक होता है, तो उसमें मुझे लिखना था और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे साथ खाने पे चलें। तो उन्होंने कहा हाँ, और वो बड़ा अच्छा होता है, उसमें आप बात करते हैं और उनके बारे में और वही खाना भी खाते हैं और लिखते भी। हमने कहा कि हमें लोगों ने ये बताया है कि आप वॉक करते हैं तो काफी लोग पीछे रहते हैं और काफी लंबा वॉक होता है, तो कहते हैं कि हाँ हम बहुत वॉक करते हैं और हमारा स्पोर्ट्स से थोड़ा एक वो भी रहा है, तो तुम बताओ मेरी एज क्या है। मैं एकदम हतप्रभ था, मुझे किसी का एज गेस करना थोड़ा मुश्किल भी होता है, 40 के आसपास होगी। तो उन्होंने कहा नहीं, 50 के पास है। अब ये वाक्या देखिए 20 साल का है, 20 साल के अंदर ये नहीं मालूम था कि इतने चेंजेस हो जाएंगे और उनकी हालत इस तरह की हो जाएगी जिसमें कि उनकी हेल्थ एकदम साथ नहीं देगी।
अच्छा ये बताइए अजय, वो बहुत अच्छे सांसद थे, खासतौर से जब वो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हुआ करते थे।
सांसद के रूप में और अगर आप देखिए लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में और लीडर ऑफ हाउस के रूप में, आप कई चीजें देखेंगे जो कि उन्होंने पॉलिटिकल जो लेक्सिकन था इंडिया का उसमें डाला है, जैसे पॉलिसी पैरालिसिस ये वर्ड जो था, और इस वर्ड ने अगर आप याद करिएगा यूपीए 1 और यूपीए 2 में बहुत दिक्कत किया। ये शब्द कॉइन करना उनका एक शौक था और वो इतना बढ़िया कॉइन होता था कि वो रिजोनेट भी करता था।
अच्छा, ऐसे स्ट्रेटेजिस्ट भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार थे, हालांकि वो खुद अपना चुनाव हार गए थे लेकिन नीतियां बनाने में उनका बड़ा योगदान था।
नहीं, स्ट्रेटेजिस्ट तो वो बहुत अच्छे थे। मुझे याद है 2002 का इलेक्शन अगर गुजरात असेंबली का आप देखें तो वो पूरा वो वहां बैठे रहते थे, 2007 में भी, 2009 में भी वो चीफ स्ट्रेटजिस्ट थे। दरअसल प्रमोद महाजन के जाने के बाद तो एक तरह से जो चीफ स्ट्रेटजी का रोल था वो उन्हीं के पास था।
अच्छा ये बताइए, वो एक जमाने में आडवाणी के खासम खास माने जाते थे, आडवाणी कैंप से मोदी कैंप में किस तरह से शिफ्ट हुआ उनका?
हमारे ख्याल से ये अंडरस्टैंडिंग अरुण जेटली के बारे में बड़ी रॉन्ग है और ये हमारे ख्याल से पॉलिटिक्स के बारे में भी शायद सही अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। अरुण जेटली कभी भी आडवाणी कैंप के नहीं थे और कभी भी आडवाणी कैंप मोदी कैंप से अलहदा नहीं था। यानी हम अगर उसको कैंप में डिवीजन में देखेंगे ब्लैक एंड व्हाइट में, तो शायद अरुण जेटली को मोदी को आडवाणी को हम समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए अरुण जेटली और मोदी के संबंध जहां तक मेरी जानकारी है वो 70s के, और वो संबंध लगातार रहे। आडवाणी नेता थे बड़े और ऐसा नहीं था कि अरुण जेटली अपना राइज जो है वो किसी एक इंडिविजुअल से ओ करते, यानी वो आडवाणी की वजह से बीजेपी में आए या वाजपेयी जी की वजह से आए। अरुण जेटली अगर आप सच देखें तो वीपी सिंह के टाइम में बड़े इंपॉर्टेंट आदमी थे।
वरिष्ठ पत्रकार अजय सिंह से बात कर रहे थे रेहान फजल। और आइए एक नज़र बीबीसी हिंदी के पन्ने पर, bbchindi.com पर। जेटली के निधन के बाद मोदी क्यों नहीं आ पाए? मोदी के बयान से उनकी दुविधा साफ झलकती है। आखिर मोदी ने इतना कठोर फैसला क्यों किया? क्या थी मोदी की दुविधा और उन्होंने कैसे इतना कठोर फैसला किया कि वो अरुण जेटली के निधन के बाद विदेश यात्रा से भारत लौटकर नहीं आ पाए? पढ़ने के लिए आइए हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर।
दिन भर शॉर्ट वेव 31 और 25 मीटर बैंड यानी 9460, 9510, 11795, 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं शाम की सभा। दिन भर शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक पूरे एक घंटे का प्रसारण। दिन भर में अब बात भारत प्रशासित कश्मीर की। जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत मिले विशेष राज्य का दर्जा खत्म किए जाने के बाद एक पखवाड़े से भी ज्यादा समय बीत चुका है। आम लोगों के लिए संचार सेवाएं पहले की तरह बाधित हैं। मैंने अब से कुछ देर पहले श्रीनगर में हमारे सहयोगी माजिद जहांगीर से बात की और पहला सवाल यही पूछा कि आज का दिन कश्मीर घाटी में किस तरह बीता?
हाँ देखिए, मैं एक्चुअली आज साउथ कश्मीर गया था, तो वहाँ साउथ कश्मीर चूंकि काफ़ी सेंसिटिव रहा पिछले 2-4 सालों से, तो लेकिन साउथ कश्मीर की सड़कों पे भी हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो देखने को कहीं नहीं मिला। अलबत्ता इतना ज़रूर था कि प्राइवेट गाड़ियाँ कुछ चल रही थी और दुकानें एकदम बंद थी और सिक्योरिटी फोर्सेज की भी बहुत ज़्यादा प्रेजेंस नहीं थी। जहाँ हम गए जिस इलाके में, कुलगाम इलाके में हम गए थे, एक बहुत ही दूर दराज इलाके में जो आखिरी गाँव है साउथ कुलगाम जिले का, जहाँ हम गए थे वहाँ भी सिक्योरिटी बिल्कुल, वो शुरू से ही वहाँ कोई डिप्लॉयमेंट नहीं रही है। लेकिन एक अनइजी काम हर जगह हमने देखा, बहुत ही कम लोग हमने बाहर देखे। कई लोगों से बात की हमने, हर कोई हमसे ये पूछ रहा था कि अब आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, और लोग ये समझने से कासिर हैं, लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कश्मीर फिर से किस तरह सामान्य हो जाएगा, किस तरह से फिर दुकानें खुलेंगी, किस तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है सड़कों पर आएगा, तो हर कोई इसी एक कश्मकश में है।
माजिद, ये बताइए कि प्राइमरी स्कूल्स खोलने का फैसला कुछ दिन पहले हुआ था, अब के दिन, अब आज छुट्टी हो जाएगी खत्म, कल सोमवार को जब दोबारा स्कूल जाने की बारी आएगी, क्या माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए राजी नजर आए आपको? कैसे, क्या कुछ लोगों से बात हो पाई आपकी इस बारे में?
क्योंकि आज संडे था और ज़रूर एक मेरे जहन में ये ख्याल था कि मैं 2-3 स्कूलों में जाऊं और वहां मैं हाल देखूं, तो लेकिन उसके बावजूद मैंने वहां जो गांव के लोग हैं, क्योंकि शायद श्रीनगर में ये अंदाज़ा है कि यहां से जो 150 किलोमीटर 130 किलोमीटर दूर गांव होगा वहां स्कूल खुले होंगे, जिन गांवों से मैं गुजरा, मैं रुका, लोगों से बात की और हर एक का यही कहना था कि यहाँ कोई स्कूल नहीं खुला, कोई बच्चा स्कूल नहीं गया। और हमने ये भी पूछा कि यहाँ तो सिक्योरिटी भी नहीं है, यहाँ पथराव नहीं होता है, तो बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते हैं? तो उनका जवाब ये था कि पूरे कश्मीर के हालात ख़राब हैं, तो यहाँ किस तरह से बच्चों को हम स्कूल भेजें। फिर हमने ये सवाल किया कि क्या सरकार के इस ऐलान के बाद कि प्राइमरी स्कूल और मिडिल लेवल के स्कूल जो है खोले गए थे, सरकार ने दावा किया था कि 63% जो है अटेंडेंस स्कूलों में देखी गई, तो उनका कहना था कि जिन लोगों से मेरी बात हुई, कई गाँव थे, तो उनका कहना था कि किसी भी गाँव में, उनके गाँव में जहाँ जहाँ मैं था, कि यहाँ कोई स्कूल नहीं खुला और ना कोई छात्र स्कूल गया। और मुझे लग रहा है कि कल भी ऐसा ही हाल होगा कि माता पिता जो है अपने बच्चों को अभी स्कूल भेजने की स्थिति में नहीं है।
माजिद, ये बताइए कि जम्मू कश्मीर सरकार के जो अधिकारी हैं, उनसे किसी से आपकी कुछ बातचीत हो पाई, उनका क्या कहना है?
हाँ देखिए, जो सरकार अभी, क्योंकि यहाँ कम्युनिकेशन ब्लॉकेड है और आप बराह रास्त किसी से गुफ्तगू या टेलीफोन बात कर नहीं पाते हैं, या ऑफ द रिकॉर्ड भी आप किसी बड़े अधिकारी से कुछ नहीं पूछ पाते हैं, तो अब सरकार ने जो रूटीन है उनकी, एक प्रेस वार्ता करते हैं ये हर दिन शाम 6 बजे, तो हमने बारहा ये उनसे सवाल किए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किए। एक्चुअली वो तो कहते हैं कि हालात सामान्य हैं, तो लेकिन ज़मीन पर आप जब देखते हैं तो ऐसा आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है। जिस गांव में मैं गया था, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो श्रीनगर से 130 किलोमीटर दूर गांव है, जहां सिक्योरिटी फोर्सेज का दूर दूर तक निशान नहीं है। मतलब 5 अगस्त के दिन भी वहाँ कोई डिप्लॉयमेंट नहीं हुई थी और उन्होंने किसी सिक्योरिटी अहलकार का चेहरा भी नहीं देखा है आज तक। लेकिन इसके बावजूद वो लोग अपने गाँव से बाहर नहीं आते हैं। जब हमने उनसे सवाल किया कि आप बाहर क्यों नहीं जाते हैं, यहाँ तो पूरा सामान्य लग रहा है, तो कहना है कि हम डरते हैं अपने गाँव से बाहर जाने, श्रीनगर, अनंतनाग, कुलगाम, यानी कि दमहाल, हांजीपुरा एक जगह है वहाँ पे सामान लेने के लिए, तो वो सामान लेने के लिए भी नहीं जा पाते हैं। कि वो कह रहे हैं कि पूरे कश्मीर में हालात खराब हैं और हमें ये कहा जाता है कि ज़्यादा दूर जाएंगे तो गिरफ्तार किया जाएगा। तो इस तरह से जो ज़मीनी हालात हमें दिख रहे हैं, गाँव हो शहर हो, तो हालात तो हमें सामान्य नहीं दिख रहे हैं। तो लेकिन सरकार दावा बार बार कर किया उन्होंने प्रेस वार्ताओं में कि नॉर्मल सी है, इंसिडेंट फ्री दिन गुजर रहे हैं।
ये थे श्रीनगर से हमारे सहयोगी माजिद जहांगीर। कार्यक्रम में आगे हम आपको बताएंगे क्या अनुच्छेद 370 खत्म करने से कश्मीर समस्या खत्म हो गई है या खत्म हो जाएगी ये समस्या, जैसा कि अक्सर ये कहा जाता है। लेकिन पहले एक नज़र जम्मू कश्मीर के हालात पर, जहां हमारे सहयोगी शकील अख्तर ने भारत प्रशासित कश्मीर में बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर से बात की अब से कुछ देर पहले, और ये जानना चाहा कि वहां के हालात, जम्मू कश्मीर के हालात क्या ज़मीन पर वाकई बेहतर हुए हैं।
स्थिति को आंकने का जो क्राइटेरिया है वो अलग अलग होता है। अगर स्थिति को आंकने का ये क्राइटेरिया है कि कितने लोग मारे गए, तो यहाँ स्थिति पूरी तरह से शांतिपूर्ण है अगर 2016 के साथ उसका मुकाबला किया जाए। लेकिन अगर स्थिति को आंकने का ये क्राइटेरिया रखा जाए कि वहाँ पे आम जनजीवन कैसा है, तो पूरी तरह से ठप है, क्योंकि सारे कम्युनिकेशन साधन जो है, जो भी संचार के साधन है, वो पूरी तरह से बंद है। इसलिए लोगों को ऐसा नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में उनको कोई कठिनाई है, बल्कि यह है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा है, उन्हें अपनी निजी गाड़ी से चलना होगा या किसी को जो है किसी की दूसरी गाड़ी में जाना होगा। कमर्शियल ट्रांसपोर्ट बंद है और एक जिले से दूसरी जिले के साथ संपर्क करने में भी कठिनाइयां हैं, क्योंकि टेलीफोन लाइन नहीं है। लैंडलाइन तो इन्होंने बहाल किया है, लेकिन वो पूरे कश्मीर में हर एक जिले में नहीं चल रही है। तो ये कठिनाइयां तो है। हालांकि खाने पीने की चीजों या दूसरी जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी किसी भी तरह की कोई किल्लत नहीं है।
रियाज, ये कारगिल और दराज का जो एरिया है, ये इसे दूर दराज का एरिया है, लेकिन इन क्षेत्रों से भी कुछ समाचार मिल रहे हैं कि वहाँ क्या स्थिति है?
जी बिल्कुल, शुरू में तो कारगिल में, क्योंकि वहाँ पे आबादी का जो रेशियो है वो मुस्लिम डोमिनेटेड जिला है लद्दाख का, तो वहाँ पे शुरू में इसमें प्रदर्शन हुए, लेकिन प्रदर्शनकारियों का जो मांग है वो डिफरेंट थी कश्मीर के मुकाबले में। उनका कहना था कि उनके साथ ज्यादती हुई है, क्योंकि उनको बुद्धिस्ट मेजॉरिटी वाले लेह जिले के साथ नथी कर दिया गया है, उन्हें अलग एक इंडिपेंडेंट एंटिटी के तौर पे नहीं माना गया है। लेकिन अब वहाँ भी कारगिल में भी जो स्थिति है वो सामान्य हो रही है, और कारगिल में तो ये बड़ी बात है कि वहाँ पे इंटरनेट भी काम कर रहा है, हालांकि सीमित रूप से वो काम कर रहा है, लैंडलाइन पे ब्रॉडबैंड पे काम कर रहा है, लेकिन काम कर रहा है, और मोबाइल फोन पे वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो हड़ताल कुछ चंद दिनों के लिए की गई थी वहाँ, लेकिन उसके बाद जो व्यापारी गतिविधियां हैं या शिक्षा संस्थानों में बच्चों का आना जाना है, तो वो सब वहाँ पे बहाल हो गया।
सरकारी सूत्रों का कहना है कि जम्मू में के ज्यादातर जिलों में स्थिति जो है नॉर्मल है, तो वहाँ क्या स्थिति है?
देखिए, जम्मू का जो क्षेत्र है वो सिर्फ जम्मू शहर नहीं है, इसीलिए जो भी इमेजेस आती हैं वो जम्मू शहर से आते हैं। जम्मू शहर में तो स्थिति बिल्कुल सामान्य है, लेकिन जम्मू का मतलब राजौरी, पुंछ, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, जो भी हिमालय के पीर पंचाल क्षेत्र में जितने भी जिले आते हैं, तो उस सब का नाम जम्मू है। तो जाहिर है जम्मू में अगर कुल मिला के कहा जाए तो सिर्फ जम्मू शहर, सांबा, कठुआ के कुछ क्षेत्र और रामबन के आधे क्षेत्र में स्थिति सामान्य है, लेकिन बाकी जगहों पे जहाँ पे तनाव पूर्ण स्थिति है उसकी खबरें तो यहाँ आती हैं, लेकिन जब वहाँ से कोई यहाँ पे आ जाए या यहाँ से कोई वहाँ जाए, वहाँ पे जो है प्रतिबंध भी हैं और वहाँ पे हड़ताल भी है, लोग व्यापारी गतिविधियां शुरू नहीं कर रहे हैं और शिक्षा संस्थानों में भी हाजिरी बहुत कम है। हालांकि प्रशासन ने काफी कोशिश की कि जो हायर सेकेंडरी या सेकेंडरी लेवल के शिक्षा संस्थान है उनको खोला जाए, उसमें अभी तक कामयाबी प्रशासन को नहीं मिली है। और इंटरनेट और फोन कॉल्स पे जो प्रतिबंध है वो पूरे जम्मू क्षेत्र में अभी भी है।
श्रीनगर में बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर से बात कर रहे थे शकील अख्तर। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के स्पेशल सेक्रेटरी रहे और कश्मीर मामलों पर पैनी नजर रखने वाले राणा बनर्जी आज बीबीसी हिंदी के दिल्ली स्टूडियो आए। हमारे वरिष्ठ सहयोगी रेहान फजल ने उनसे बात की और पहला सवाल यही पूछा कि अनुच्छेद 370 के तहत कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने से क्या कश्मीर समस्या खत्म हो गई है?
जी नहीं, मैं ये तो नहीं मानता। इतना सहज अगर अंत होता करना तो पहले ही हो जाना था, लेकिन ये ज़रूर है कि ये जो निराकरण की प्रतिक्रिया है 370 और 35A की, ये इनके मैनिफेस्टो में बहुत दिनों से था और कश्मीर में एक अचल अवस्था सी आ गई थी। न कोई बात आगे बढ़ती थी, न पीछे जाती थी। तो कुछ मायनों में बीजेपी का ये समझना है कि अगर इतिहास में जाएं तो जगमोहन साहब की किताब है फ्रोजन टर्बुलेंस, उसमें उन्होंने इस आर्ग्यूमेंट को काफ़ी देर से प्रस्तुत किया है कि 370 को हटाने से बहुत से मामले अपने आप से हल हो जाएंगे आम कश्मीरियों के लिए। और इस बात में मैं समझता हूं कि ज़रूर कुछ दम है, एकदम इसको निष्कार करना ठीक नहीं होगा। तो ये सोच जो है एक नई दिशा में एक सोच है।
लेकिन इसका कोई और विकल्प नहीं था इसको हटाने के अलावा? आप समझते हैं ये बिल्कुल एब्सोल्युटली जरूरी था?
एब्सोल्युटली तो मैं नहीं समझता, विकल्प पिछले इतिहास में थे, ट्राई भी किए गए थे। अब जैसे दो मुल्कों में बातचीत जो हुई थी 2007-08 तक, जो लंबा अजीज बातचीत जो ट्रैक 2 में हुई थी, उसमें कश्मीर समस्या के हल होने की संभावना आगे बढ़ी थी, लेकिन उसके बाद से फिर पाकिस्तान पीछे हट गया और आतंकवाद का जो उसका अस्त्र है वो फिर से वो इस्तेमाल करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो इसलिए अब आतंकवाद जब तक वो उसका निष्कार नहीं करते तो दूसरी कोई पद्धति सुलझाने के लिए समझ में नहीं आ रही थी। तो
लेकिन आपको नहीं लगता कि कश्मीर में जो भारत समर्थक लोग हैं, जो भारत के झंडा बरदार हैं, जो कश्मीरी लोग हैं, उनकी पोजीशन थोड़ी कमज़ोर हुई है इस मूव से?
नेताओं की तो अवश्य, जो ओवरग्राउंड में नेता थे उनकी तो अवस्था बहुत ही कमज़ोर हुई है, और राजनीतिक रूप से मैं समझता हूँ कि भविष्य में वो काफ़ी निष्क्रिय हो जाएंगे। लेकिन ये भी
मेरा मतलब नेताओं से नहीं है, जो भारत समर्थक लोग हैं वो अपने आप को आइसोलेटेड नहीं महसूस कर पा रहे?
नहीं, मैं पूरी तरह इससे निराशावादी इतना नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि जो कश्मीरी वादी में जो लोग हैं उनको समझने की ज़रूरत है। शायद वो समझ भी जाएंगे कि शायद इसमें हमारी भलाई है, और इतनी वहाँ पर आतंकवाद से जुड़ी हुई समस्याएं रही हैं, मरे हैं लोग, तो कश्मीरी माताएं भी जो हैं वो समझती हैं कि हमारे बच्चों को भी एक हताशवाद की जो अवस्था है उससे किसी दूसरी ओर मोड़ देने के लिए, तो ये मैं समझता हूँ कि शायद ही अच्छा एक पदक्षेप है।
लेकिन बनर्जी साहब 20 दिन हो गए हैं और पूरे रेस्ट्रिक्शंस लागू हैं कश्मीर में,
जी
ये इंडेफिनेट पीरियड तक तो नहीं चल सकता?
सही है, आपकी धारणा बिल्कुल सही है। कठोर रुकावट जो है ये चिरस्थाई नहीं हो सकता, और कुछ न कुछ वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको शीघ्र ही सोचना पड़ेगा कि हल्के हल्के सुधार या रिलैक्सेशन जिसको कहते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड्स लाए जाएं। इस पर जो है कश्मीर वादी में भी जो वहाँ के लोग हैं उन पर भी ये निर्भर करेगा कि किस तरह का वो प्रतिरोध करेंगे। प्रतिरोध अवश्य होगा क्योंकि ये एक बहुत ही जिसको कहते हैं कि आवेग वाली बात है उनके लिए, उनकी आज़ादी की संभावना या जो स्पेशल स्टेटस की जो बात है इस पर आवेग बहुत हैं। तो प्रतिरोध अगर पीसफुल रहा तब मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे रिलैक्सेशन संभव है, और ये ट्रायल एंड एरर मेथड से हो सकता है।
ये तो फैसला सरकार ने ले लिया और इस तरह के तमाम रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दिए, लेकिन आगे क्या, अब आप क्या देखते हैं इसके आगे? क्या पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होना चाहिए? आपकी क्या राय है? आप बहुत कश्मीर को बहुत नज़दीक से देखते हैं।
जी हाँ, पॉलिटिकल प्रोसेस तो अवश्य ही शुरू होना चाहिए। किस प्रकार का पॉलिटिकल प्रोसेस होगा इस पर अभी बहुत सारे विचार होंगे। जो अवस्था खुल के आएगी उस पर निर्भर करेगा। फ्लेक्सिबल रिस्पांस मेरे ख्याल से रखना पड़ेगा हम लोगों को, जैसे कि वहाँ पंचायती राज के वो हुए हैं, कुछ नए नेता उसमें आए हैं, और उनका रवैया कैसे होता है, किस तरह की डेवलपमेंट मूलक जो कार्य होते हैं उसमें आगे पद्धति कैसे चल पाती है। फिर जो है डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज की भी बात है, फिर नए इलेक्शन भी होने हैं। हो सकता है अगर शांतिपूर्ण रूप से ये सब हो जाए तो फिर से स्टेट का स्टेटस कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर को मिल सकता है।
लेकिन जो कश्मीर वॉचर हैं उनका कहना है कि आप कश्मीर को तब तक अपनी तरफ नहीं कर सकते जब तक आप लोगों के दिल नहीं जीते।
बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है।
लेकिन आपको लगता है कि इस तरफ कोई कदम उठाया गया है?
उम्मीदें तो बहुत हैं, लेकिन जब तक ग्राउंड में वर्तमान उसकी कोई प्रूफ नहीं मिलती है कि कोई अच्छा काम ऐसा हो जिससे कि कश्मीरियों का फिर से दिल जीत जा सके, उनका कॉन्फिडेंस फिर से आ जाए हमारी इंस्टीट्यूशंस में, हमारी व्यवस्था पर, तभी ये संभव हो पाएगा। और ये एक लंबा, जिसको कहते हैं लॉन्ग हॉल, होगा। और इस पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन की, स्टेट की भी और सेंटर की भी एडमिनिस्ट्रेशन की सिंसेरिटी को बहुत कठिन उस पर परखा जाएगा स्टैंडर्ड्स पे।
अच्छा, पाकिस्तान ने जिस तरह से इसको हैंडल किया है जी, आपकी क्या राय है, आप इसको किस तरह से देखते हैं?
देखिए, पाकिस्तान के पास और कोई उपचार नहीं था। वो कुछ हद तक तो सोचते थे कि ऐसा होगा, लेकिन फिर भी वो शॉक्ड हुए जब ये हुआ। उसके बाद उनके पास और कोई उपचार नहीं था, वही जिसको कहते हैं कि वाक चातुर्य, रेटरिक से जो है कश्मीर की बात करना, इंटरनेशनल ओपिनियन के सामने इसको उठा के रखना, और ये वो करते रहेंगे। दूसरी चीज़ है कि जो दूसरे प्रकार की मदद की बात है, जो कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जो होता रहा है, उस पे भी जो है इनके लिए समस्या है बहुत बड़ी, जिसको कहते हैं ना कि अगर वो करें तब भी मुश्किल है, ना करें तब भी मुश्किल है, क्योंकि इस वक्त सारी संसार की नज़रें हैं उनके ऊपर कि टेररिज्म का बढ़ावा वो किस तरह देते हैं, किस तरह टेररिज्म के लिए पैसों का जुगाड़ वगैरह होता रहा है उनकी मदद से, इस पर भी ब्लैक लिस्ट वो फेस कर रहे हैं। तो वो बहुत चतुराई से अगर वो कुछ करेंगे तब जाके कुछ इस तरह की बात फिर से देखने में आएगी, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि फिर से उन पर ये आरोप लगे कि वो आतंकवाद की प्रतिक्रिया को बढ़ावा दे रहे हैं।
अच्छा, कश्मीर पे ये जो फैसला सरकार ने लिया है, ये एक तरह से अप्रत्याशित था, इसकी पहले से कोई उम्मीद नहीं थी, एक तरह से शॉक ट्रीटमेंट था
जी।
आपको लगता है सरकार ने प्रॉपर होमवर्क किया था इसके लिए?
ऐसा लगता है इस बार जो है बहुत जत्न से जो है ये जो वहाँ का जो टेररिज्म का या आतंकवाद का जो परितंत्र था या जो जालक्रम पहले से बिछे हुए थे उनको रोकने की लिए काफ़ी कार्रवाई की गई। जो भारतीय अनुसंधान संस्था है उन्होंने पैसे आने जाने के रोक पर काफ़ी नज़र रखी और प्रतिक्रियाएँ भी शुरू की हैं, तो मेरे ख्याल से इसका एक प्रभाव हुआ है। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये आशावादी हमें होके चलना चाहिए और कश्मीर की वादी की जनता को खासकर सोचना चाहिए कि शायद भारत की सरकार ऐसा पदक्षेप जो है उनकी भलाई के लिए अच्छी तरह सोच के ही आगे बढ़ रही है।
भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के स्पेशल सेक्रेटरी रहे और कश्मीर मामलों पर पैनी नजर रखने वाले राणा बनर्जी से बात कर रहे थे रेहान फजल। बीबीसी हिंदी सेवा से इस समय आप सुन रहे हैं दिन भर, हफ्ते के सातों दिन भारतीय समयानुसार शाम 7:30 से 8:30 बजे तक, रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी। कार्यक्रम में आगे अंतर्राष्ट्रीय खबरें और खेल समाचार, लेकिन पहले सुनते हैं अभी तक के मुख्य समाचार एक बार फिर गुरप्रीत सैनी से।
बीबीसी समाचार। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का दिल्ली के निगम बोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया है। उन्हें अंतिम विदाई देने पक्ष और विपक्ष के कई बड़े नेता पहुंचे। जेटली का लंबी बीमारी के बाद दिल्ली के एम्स अस्पताल में शनिवार को निधन हो गया था। भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने स्विट्जरलैंड में चल रही विश्व चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। एकतरफा रहे मुकाबले में उन्होंने जापान के खिलाड़ी नोजोमी ओकुहारा को 21-7, 21-7 के अंतर से हरा दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि G7 देशों के नेता ईरान परमाणु समझौते को लेकर मतभेदों के बावजूद ईरान के मुद्दे पर साझा रुख अपनाने के लिए तैयार हो गए हैं। मैक्रों ने कहा कि समूह का कोई भी देश ये नहीं चाहता कि ईरान के पास परमाणु हथियार हों। उन्होंने कहा कि सभी देश क्षेत्र की शांति और स्थिरता को खतरा पहुंचाने वाले कृत्यों से बचने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान के लिए किसी खास संदेश पर कोई चर्चा नहीं हुई है। इस बीच खबर आ रही है कि ईरान के विदेश मंत्री जावेद जरीफ को नॉर्वे की एक बैठक में शामिल होने के लिए ले गया विमान अब बियरिट्स में लैंड हुआ है, जिससे ईरान के मुद्दे पर वार्ता के किसी नतीजे पर पहुंचने की अटकलें लगाई जा रही हैं। ब्रिटानी प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि ब्रिटेन का बिना समझौते के यूरोपीय संघ से अलग होना अब एक करीबी मामला है। इससे पहले वो कह चुके हैं कि इसकी संभावना 10 लाख में से 1 के बराबर है। G7 सम्मेलन के दौरान बीबीसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि समझौता होगा या नहीं ये ब्रिटेन के यूरोपीय संघ में दोस्तों और सहयोगियों पर निर्भर करेगा।
हांगकांग की दंगारोधी पुलिस ने जून में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन शुरू होने के बाद से पहली बार पानी की बौछार करने वाली मशीनें तैनात की हैं। इसे पुलिस की रणनीति में बदलाव भी माना जा रहा है। अवरोधक हटाने और प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया गया है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे हैं, वहीं प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की है। बांग्लादेश में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों ने म्यांमार से जबरदस्ती निकाले जाने के 2 साल पूरे होने पर रैली निकाली है। कुछ लोगों ने प्रार्थना की जबकि कईयों ने बैनर दिखाए। इन बैनरों पर रोहिंग्या लोगों ने इस दिन को नरसंहार यादगार दिवस बताया है। इसी बीच बांग्लादेश के गुरुवार को शरणार्थियों को वापस भेजने का प्रयास नाकाम हो गया। किसी भी शरणार्थी ने वापस लौटने पर सहमति नहीं दी है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने संकट के समय में चरमपंथी सामग्री होस्ट करने वाली वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाने की योजना का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि चरमपंथी अपने अपराधों का महिमा मंडन ना कर सके। इसी साल मार्च में न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में मस्जिदों पर हुए हमले को सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम किया गया था। बीबीसी समाचार।
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी मीडिया के जरिए आज एक बार फिर अपने मन की बात कही है। इस बार क्या कहा है उन्होंने, सुनवाएंगे आपको कार्यक्रम में आगे, लेकिन पहले अंतर्राष्ट्रीय खबर। दुनिया भर के बड़े नेता इस समय फ्रांस में मौजूद हैं। मौका है G7 देशों की सालाना बैठक का। G7 समूह क्या है इसके बारे में भी बताएंगे आपको, लेकिन पहले सुनिए G7 की बैठक में आज क्या कुछ हुआ। गुरप्रीत सैनी की जुबानी।
फ्रांस में समुद्र किनारे बसे खूबसूरत शहर बियरिट्स में G7 समूह की बैठक हो रही है। इस बार की बैठक का ज्यादातर फोकस अमेज़न के जंगलों में लगी आग और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। बैठक में ईरान को लेकर भी बात हुई। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि ईरान परमाणु समझौते पर असहमतियों के बावजूद G7 देशों के नेताओं के बीच ईरान को लेकर एक आम रुख पर सहमति बनी है। पत्रकारों से बातचीत में मैक्रों ने कहा कि कोई भी संघर्ष नहीं चाहता।
Cette discussion sur l'Iran a dégagé deux lignes de force.
ईरान पर हुई चर्चा में दो बातों पर सहमति बनी। पहली कि G7 का कोई भी सदस्य नहीं चाहता कि ईरान के पास परमाणु हथियार हों। दूसरा, G7 के सभी सदस्य इलाके में शांति और स्थिरता के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसलिए कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते जिससे इसे नुकसान पहुंचे।
ये थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के शब्द। हालांकि ट्रंप ने कहा कि ईरान को संयुक्त संदेश देने पर कोई चर्चा नहीं हुई। सम्मेलन के इतर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे से भी मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ पहली द्विपक्षीय बैठक की। ट्रंप और बोरिस के बीच ब्रेक्जिट को लेकर बातचीत हुई और ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने के तुरंत बाद दोनों देशों के बीच एक बहुत बड़ा व्यापार समझौता हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ब्रेक्जिट के लिए बोरिस जॉनसन एकदम सही व्यक्ति हैं।
उन्हें किसी सलाह की जरूरत नहीं है, वो इस काम के लिए एकदम सही आदमी है। ये मैं लंबे वक्त से कहता रहा हूँ। आपसे पहले जो प्रधानमंत्री थीं, उन्हें मैं ज्यादा खुश नहीं कर पाया, पर मैं ये कहता रहा हूँ कि बोरिस सही आदमी है।
ये थे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। वहीं बोरिस जॉनसन ने कहा, ट्रंप ने स्वीकार कर लिया है कि किसी भी समझौते के वक्त ब्रिटेन की सरकारी नेशनल हेल्थ सर्विस के बारे में कोई बात नहीं होगी।
ना सिर्फ मैंने ये साफ कर दिया बल्कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ये साफ बोला है। इस मुद्दे पर पूरी सहमति बन गई है।
ये थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के शब्द। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने राष्ट्रपति ट्रंप से अपील की कि वो व्यापार युद्धों को बढ़ाए ना। उन्होंने ट्रंप से कहा कि ब्रिटेन शांति से व्यापार करने के पक्ष में है, ना कि व्यापार युद्धों के। इस बीच G7 सम्मेलन के खिलाफ हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। ये लोग G7 सम्मेलन के आयोजन स्थल के रास्ते में पड़ने वाले एक पुल पर प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए फ्रांस की पुलिस ने पानी की तेज बौछारें की। प्रदर्शनकारियों में वैश्वीकरण विरोधी कार्यकर्ता, जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता और बास्क अलगाववादियों के साथ फ्रांस के सरकार विरोधी येलो वेस्ट आंदोलन के समर्थक भी शामिल थे। इन प्रदर्शनकारियों का कहना था कि ये वैश्विक नेता अमीर गरीब के बीच बढ़ रही खाई को खत्म करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं।
जैसा कि आपने इस रिपोर्ट में सुना, सुनकर कुछ सवाल आपके मन में जरूर उठे होंगे, मसलन G7 समूह क्या है, इसके सदस्य कौन है, वगैरह वगैरह। मेरे इसी तरह के सवालों का जवाब दे रही हैं एक बार फिर गुरप्रीत सैनी।
G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। इसे ग्रुप ऑफ 7 भी कहते हैं। स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की सुरक्षा, लोकतंत्र और कानून का शासन और समृद्धि तथा सतत विकास इसके प्रमुख सिद्धांत हैं। शुरुआत में ये 6 देशों का समूह था, जिसकी पहली बैठक वर्ष 1975 में हुई थी। इस बैठक में वैश्विक आर्थिक संकट के संभावित समाधानों पर विचार किया गया था। अगले साल कनाडा इस समूह में शामिल हो गया और इस तरह ये G7 बन गया। ऊर्जा नीति, जलवायु परिवर्तन, HIV/AIDS और वैश्विक सुरक्षा जैसे कुछ विषय हैं जिन पर पिछले शिखर सम्मेलनों में चर्चाएं हुई थी। सम्मेलन में भाग लेने वाले लोगों में G7 देशों के राष्ट्र प्रमुख, यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष शामिल होते हैं। यूरोपियन कमीशन के मौजूदा अध्यक्ष जियां क्लॉड यंकर हैं, जो स्वास्थ्य कारणों से इस बार के सम्मेलन में भाग नहीं ले पा रहे हैं। वहीं यूरोपीय काउंसिल के वर्तमान अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क हैं, जो इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। शिखर सम्मेलन में अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों को भी भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इस साल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया गया है।
गुरप्रीत, ये बताइए कि G7 समूह को कितना प्रभावी समूह माना जाता है?
G7 की आलोचना ये कहकर की जाती है कि ये कभी भी प्रभावी संगठन नहीं रहा है। हालांकि ये समूह कई सफलताओं का दावा करता है, जिसमें एड्स, TB और मलेरिया से लड़ने के लिए वैश्विक फंड की शुरुआत करना भी है। समूह का दावा है कि इसने साल 2002 के बाद से अब तक लगभग 3 करोड़ लोगों की जान बचाई है। समूह ये भी दावा करता है कि साल 2016 के पेरिस जलवायु समझौते को लागू करने के पीछे उसकी अहम भूमिका रही है। हालांकि अमेरिका ने समझौते से अलग हो जाने की बात कही है।
गुरप्रीत, क्या चीन इस समूह का हिस्सा नहीं है?
चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, फिर भी वो इस समूह का हिस्सा नहीं है। इसकी वजह ये है कि चीन में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रहती है और प्रति व्यक्ति आय G7 समूह देशों के मुकाबले बहुत कम है। ऐसे में चीन को उन्नत या विकसित अर्थव्यवस्था नहीं माना जाता है, जिसकी वजह से ये समूह में शामिल नहीं है। हालांकि चीन G20 देशों के समूह का हिस्सा है।
गुरप्रीत, रूस के बारे में बताइए, रूस का G7 समूह में अभी तक कोई जिक्र नहीं किया आपने।
जी संदीप, साल 1998 में G7 समूहों में रूस भी शामिल हो गया था और ये G7 से G8 हो गया था। लेकिन साल 2014 में रूस ने यूक्रेन से जब क्राइमिया हड़प लिया तो उसके विरोध स्वरूप रूस को G7 से निलंबित कर दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि रूस को समूह में फिर से शामिल किया जाना चाहिए।
गुरप्रीत, मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में G7 समूह के सामने क्या बड़ी चुनौतियां मानी जाती हैं?
G7 समूह देशों के बीच कई असहमतियां भी हैं। पिछले साल कनाडा में हुए शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अन्य सदस्य देशों के साथ मतभेद हो गया था। राष्ट्रपति ट्रंप के आरोप थे कि दूसरे देश अमेरिका पर भारी आयात शुल्क लगा रहे हैं। पर्यावरण के मुद्दे पर भी उनका सदस्य देशों के साथ मतभेद था। समूह की आलोचना इस बात के लिए भी की जाती है कि इसमें मौजूदा वैश्विक राजनीति और आर्थिक मुद्दों पर बात नहीं होती है। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिणी गोलार्ध का कोई भी देश इस समूह का हिस्सा नहीं है। भारत और ब्राजील जैसी तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं से इस समूह को चुनौती मिल रही है, जो G20 समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन G7 का हिस्सा नहीं है।
फ्रांस में G7 समूह की बैठक जानकारी दे रही थी गुरप्रीत सैनी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने सरकारी मीडिया के जरिए अपने मन की बात कहते हैं। सरकारी दावों की माने तो नरेंद्र मोदी की मन की बात लोग बड़े चाव से सुनते हैं। आइए सुनते हैं आज मन की बात के कुछ अंश।
कल हिंदुस्तान भर में श्री कृष्ण जन्म महोत्सव मनाया गया। कोई कल्पना कर सकता है कि कैसा व्यक्तित्व होगा कि आज हजारों साल के बाद भी हर उत्सव नयापन लेकर के आता है, नई प्रेरणा लेकर के आता है, नई ऊर्जा लेकर के आता है और हजारों साल पुराना जीवन ऐसा कि जो आज भी समस्याओं के समाधान के लिए उदाहरण दे सकता हो, प्रेरणा दे सकता हो। हर कोई व्यक्ति श्री कृष्ण के जीवन में से वर्तमान की समस्याओं का समाधान ढूंढ सकता है।
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैन वर्सेस वाइल्ड शो में बियर ग्रिल्स के साथ अपने अनुभव को भी साझा किया।
इस एक एपिसोड से मैं न सिर्फ हिंदुस्तान, दुनिया भर के युवाओं से जुड़ गया हूँ। मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि युवा दिलों में इस प्रकार से मेरी जगह बन जाएगी। मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि हमारे देश के और दुनिया के युवा कितनी विविधता भरी चीजों की तरफ ध्यान देते हैं। मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि कभी दुनिया भर के युवा के दिल को छूने का मेरी जिंदगी में अवसर आएगा।
ये थे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के कुछ अंश। और आइए अब जानते हैं सोशल मीडिया पर आज दिन भर क्या हलचल रही। जानने के लिए मैंने बात की अपने सहयोगी अनंत प्रकाश से, जो पूरे दिन सोशल मीडिया पर नजर रखे हुए थे।
सोशल मीडिया पर आज के दिन पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के अंतिम संस्कार की चर्चा होती रही पूरे दिन। लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। एक ट्विटर यूजर प्रदीप्तो नंदी लिखते हैं, क्या अब हम एक ऐसे देश के रूप में इतना गिर चुके हैं कि एक व्यक्ति की अंतिम यात्रा के दौरान उनके पारिवारिक सदस्यों को शोकाकुल देखकर इसे मनोरंजन तलाशते हैं? ये लाइव टेलीकास्ट और संवाददाताओं की फौज क्यों? अरुण जेटली की आत्मा को शांति मिले, मैं यही कामना करता हूँ, ये उन्होंने लिखा है। एक अन्य ट्विटर यूजर गीतिका स्वामी लिखती हैं, हालांकि पीएम मोदी आज निगम बोध घाट नहीं पहुंच पाए, लेकिन बहरीन में वह अरुण जेटली जी को याद करके भावुक हो गए थे। अरुण जेटली जी की आत्मा को शांति मिले। वहीं एक अन्य वैज्ञानिक प्रगति मुखोपाध्याय लिखती हैं, पूरे विश्व से लोग अरुण जेटली को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, पीएम मोदी ने अपने एक दोस्त के निधन पर दुख व्यक्त किया है।
अनंत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त अरब अमीरात ने सम्मानित किया है खास तौर पर, इस बारे में सोशल मीडिया पर क्या कुछ चर्चा है?
संदीप, आपने बहुत ज़रूरी बात कही है और सोशल मीडिया पर आज एक चर्चा का विषय बना रहा पूरे दिन। संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद दिया है। इससे पहले ये अवार्ड दुनिया के तमाम दूसरे बड़े नेताओं को मिल चुका है, लेकिन पाकिस्तान में इसे लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखी जा रही हैं और इसके बाद से पाकिस्तान में शेम ऑन यूएई ट्रेंड कर रहा है। आज के दिन भारत में भी पूरे दिन ये हैशटैग ट्रेंड करता रहा। कई भारतीय ट्विटर यूजर्स ने इस हैशटैग पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। एक ऐसे ही भारतीय ट्विटर यूजर आकाश बंसल लिखते हैं, जो पाकिस्तानी शेम ऑन यूएई को हैशटैग को ट्रेंड करा रहे हैं, वे अपने अंदर कुछ आत्मसम्मान जगाएं और यूएई से लिया हुआ सारा पैसा वापस करें। एक ऐसे ही अन्य ट्विटर यूजर केडीआर लिखते हैं, पाकिस्तान यूएई से आर्थिक मदद लेता है, अपने मैच यूएई में खेलता है, अपनी पाकिस्तानी क्रिकेट लीग भी यूएई में खेलता है और अब ये लोग शेम ऑन यूएई हैशटैग ट्रेंड करा रहे हैं।
अच्छा अनंत, इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात के बारे में भी क्या कुछ चर्चा हुई है सोशल मीडिया पर आज?
संदीप जी, आपने बिल्कुल सही पूछा है। सोशल मीडिया पर आज मन की बात कार्यक्रम को लेकर चर्चा चलती रही। कई लोगों ने इसकी आलोचना की, चूंकि आज पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर होना था, इसके बावजूद आज इस कार्यक्रम का प्रसारण हुआ। इस पर लोगों ने अपनी आपत्ति जताई।
सोशल मीडिया की हलचल बता रहे थे अनंत प्रकाश। और अब बात हिमाचल प्रदेश के शिमला की। शिमला का मशहूर रिज धीरे धीरे धस रहा है। भारी बारिश की वजह से रिज के ब्रितानी शासनकाल में बने गेटी सिनेमा हॉल के नज़दीक समेत कई और हिस्सों में बड़ी बड़ी दरारें साफ देखी गई हैं। इसे लेकर प्रशासन और नागरिक दोनों में चिंता है। शिमला से बीबीसी संवाददाता अरविंद छाबड़ा की रिपोर्ट।
शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान को शहर की शान माना जाता है। द रिज नाम से जाने जाने वाले ये छोटी सी जगह शाम में प्रकृति, सुंदरता और हवा का एक रोमांचक संगम पेश करता है। रिज मैदान पर अंग्रेजों के जमाने का पेयजल भंडारण टैंक भी है, जहां से शहर की पीने के पानी की आपूर्ति की जाती है। लेकिन भारी बारिश के कारण रिज के एक हिस्से में अब बड़ी बड़ी दरारें दिखने लगी हैं। इसी के साथ साथ लगी रेलिंग भी कुछ धंस गई है। जानकार मानते हैं कि ये खतरे की घंटी है, जो आने वाले दिनों में एक बड़ा संकट भी बन सकती है। शिमला के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुधीर गुप्ता बताते हैं,
देख रहे हैं सर, ये वाला सामने वाला लेवल, ये पहले ये लेवल हुआ करता था, अब ये जो इस तरफ का लेवल देख रहे हैं तो इसमें 5 या 6 इंच का जो है एक तरफ को ये झुका हुआ है।
अधिकारियों का कहना है कि समस्या गंभीर है, लेकिन इससे निपटने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। शिमला के कमिश्नर पंकज राय कहते हैं,
सर्वे भी करवाया था, उनसे रिपोर्ट भी जनरेट किया और उसमें फर्दर जो है मेरी उनसे एमडी से बात हुई, अभी जो कंपनी के एमडी हैं फर्दर उसमें इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं विद द असिस्टेंस ऑफ पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, और पूरी प्रोटेक्शन दी जाएगी रिज में जहाँ भी सब्सिडी था।
शिमला शहर के निवासी रिज के एक हिस्से के धंसने के कारण चिंता में है, साथ ही उनका कहना है कि इस मामले में प्रशासन लीपापोती कर रहा है। अंजलि शर्मा कहती हैं,
कितना धस रहा है तो ये डेंजरस भी हो सकता है और मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए।
केएस जसवाल एक बड़ी समस्या की तरफ इशारा करते हैं,
ये कुछ दिन के बाद ऐसा आने वाला है कि अगर ये रिज मैदान धस जाता है तो आधा शिमला इससे बर्बाद भी हो सकता है।
वहीं मस्तराम शर्मा को उम्मीद है कि सरकारी कोशिशों से रिज को बचाया जा सकता है।
ठीक ढंग से इसका व्यवस्था कराई जा सकती है, इसको रोका जा सकता है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, परंतु सोच अगर सरकार की अच्छी हो तो इसमें एक अच्छा प्रकार से इसकी जो देखभाल की जा सकती है।
शिमला की पहचान रिज धीरे धीरे धंस रहा है, सरकार इस बात से परिचित तो है लेकिन शायद उतनी गंभीर नहीं जितना उसे होना चाहिए। जरूरत है ठोस कदम उठाने की ताकि बड़े नुकसान को रोका जा सके। अरविंद छाबड़ा, बीबीसी शिमला।
विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में 2 कांस्य पदक और 2 रजत पदक किसी भी खिलाड़ी को महान बनाने के लिए काफी हैं, और अगर उसमें एक स्वर्ण पदक भी जुड़ जाए तो कहने ही क्या। आज ऐसा ही कर दिखाया भारत की पीवी सिंधु ने, जिन्होंने फाइनल में जापान की नोजोमी ओकुहारा को मात दी। पीवी सिंधु भारत की पहली खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने ये कामयाबी हासिल की, लेकिन कैसे, बता रहे हैं हमारे सहयोगी आदेश कुमार गुप्त इस रिपोर्ट में।
Last time I lost in the finals, before year also I lost in the finals, so it was a very important win for me and I'm really very happy.
कद 5 फुट 10 इंच, पूरा नाम पुसारला वेंकट सिंधु, उपलब्धि साल 2016 में रियो ओलंपिक में रजत पदक, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में साल 2013, 2014 में कांस्य पदक, साल 2017, 2018 में रजत पदक, एशियन गेम्स में साल 2014 में कांस्य और साल 2018 में रजत, राष्ट्रमंडल खेलों में साल 2014 में कांस्य, 2018 में रजत और मिश्रित टीम में स्वर्ण, और न जाने कितनी उपलब्धियां, लेकिन आज वो विश्व चैंपियन हैं।
सिंधु, she becomes the first player from India ever to win gold at the World Badminton Championships.
आज उन्होंने स्विट्जरलैंड में समाप्त हुई विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में तीसरी वरीयता हासिल जापान की नोजोमी ओकुहारा को मात दी। ये वही नोजोमी ओकुहारा हैं जिन्होंने सिंधु को साल 2017 में स्कॉटलैंड में विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में 21-19, 20-22, 22-20 से हराया था और सिंधु का विश्व चैंपियन बनने का सपना तोड़ा था। पिछले साल भी सिंधु फाइनल में स्पेन की कैरोलिना मारिन से हार गई थी, लेकिन लगातार तीसरी बार फाइनल खेल रही सिंधु का सूरज आज रविवार को डूबा नहीं बल्कि और चमक कर निकला। उन्होंने ओकुहारा को 21-7 से ऐसे हराया जैसे सिंधु रूपी तूफान का सामना जापान की ओकुहारा रूपी हवा से था। तूफान के सामने हवा टिक नहीं सकी और इसके साथ ही भारत के किसी खिलाड़ी का विश्व चैंपियन बनने का सपना भी पूरा हो गया। इसके लिए सिंधु ने केवल 37 मिनट का समय लिया। इस कामयाबी ने 5 फुट 10 इंच की सिंधु का कद और भी बढ़ा दिया है। सिंधु के मुकाबले पर पैनी नजर थी खेल पत्रकार राकेश राव की।
मेरे ख्याल से इतने सालों में जब से वो ओकुहारा के साथ खेल रही हैं, उनकी स्ट्रेटेजी नॉर्मली रहती है कि शटल को प्ले में रखा जाए, टॉस एंड ड्रॉप खेला जाए, थोड़ा सा प्लेसमेंट किया जाए, लेकिन आज ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। आज बिल्कुल एग्रेसिव, बिल्कुल अटैकिंग गेम, दोनों फ्लैंक्स पे प्रहार और उसके ऊपर नेट प्ले कोई ज्यादा नहीं है, इसीलिए ज्यादा रैलीज नहीं हुई है, पॉइंट जल्दी डिसाइड हुए हैं।
दूसरी तरफ पुरुष एकल वर्ग में भारत के बी साई प्रणीत ने भी सेमीफाइनल में पहुंचकर एक नया इतिहास रचा। भले ही सेमीफाइनल में उन्हें शीर्ष वरीयता हासिल जापान के केंतो मोमोता से 21-13, 21-18 से हार कर कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा, लेकिन ये साल 1983 के बाद पहला ऐसा था जब किसी भारतीय ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। तब प्रकाश पादुकोण ने कांस्य पदक जीता था। राकेश राव कहते हैं,
आपसे जितनी उम्मीद की जाती है, जितना आपका एक स्ट्रेंथ माना जाता है, अगर आप उससे ऊपर परफॉर्म करते हैं तो ये एक बहुत अच्छी उपलब्धि है आपके लिए और इस कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे जा सकते हैं। आगे अभी आपको ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी करना है तो अभी साई के लिए तो ये बहुत अच्छा स्टेप है।
तो पीवी सिंधु और बी साई प्रणीत की कामयाबी ने भारत के लिए कामयाब बनाया विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप को।
आदेश कुमार गुप्त बता रहे थे। और पीवी सिंधु की जीत पर उनकी मां ने क्या कहा वो आप इस समय आकर bbchindi.com पर पढ़ सकते हैं। उन्हें बधाई देने का तांता लग गया है। प्रधानमंत्री सचिन तेंदुलकर और तमाम बड़ी हस्तियों ने उन्हें उनकी इस कामयाबी पर बधाई दी है। और स्पीच आदेश कुमार गुप्त एक बार फिर स्टूडियो में आ चुके हैं। आदेश जी अब मैं एक चर्चा को जरा 2-3 सवालों में बांट लेता हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अमरीकी ओपन टेनिस की जो कल से शुरू हो रहा है। भारतीय खिलाड़ी इसमें क्वालिफाई कर गए हैं, क्या देखते हैं आप?
जी देखिए, ये साल का चौथा और आखिरी ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है अमेरिकी ओपन, और ये भारत के लिए मुसीबत भरी सौगात लेकर आया है। दरअसल मुद्दत बाद कोई भारतीय खिलाड़ी पुरुष एकल वर्ग के मुख्य दौर में पहुंचा है, लेकिन उसके सामने तीसरी वरीयता हासिल स्पिन के रॉजर फेडरर हैं और भारतीय खिलाड़ी हैं क्वालिफायर सुमित नागल। सुमित नागल की उम्र केवल 22 साल है। इससे पहले वो पिछले साल फ्रेंच और विंबलडन के पहले ही क्वालिफाइंग राउंड में हारकर बाहर हो गए थे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट होते हैं उसमें शुरुआती दौर कैसे खेले जाते हैं उसका अनुभव उनके पास है। हालांकि वो उससे चुनौती पार नहीं पा सके जैसे कि फ्रेंच ओपन और विंबलडन में हुआ, लेकिन अब अमेरिकी ओपन क्योंकि अलग तरह का कोर्ट होता है, विंबलडन घास पर खेला जाता है, फ्रेंच ओपन की बात की जाए तो आप जानते हैं कि लाल बजरी पर खेला जाता है जिसके पास राफेल नडाल। लेकिन कुल मिलाकर फेडरर को भी ये कहा जा सकता है कि किसी समय उनकी तूती ऐसी बोलती थी कि आप देखिए साल 2004, 2005, 2006, 2007 और 2008 यानी कि लगातार 5 बार वो अमेरिकी ओपन चैंपियन रह चुके हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगोतेली, लेकिन किस्मत में अगर अच्छी हो तो सितारे बदल भी सकते हैं। कोई खिलाड़ी चोटिल होकर भी बाहर होता है। अभी देखिए थोड़ी देर दिनों पहले एक टूर्नामेंट था जहां सेरेना विलियम्स चोट के कारण फाइनल में एक ऐसी खिलाड़ी से हार गए जिस खिलाड़ी को कोई जानता भी नहीं था। लेकिन फेडरर फिटनेस के लिए माने जाते हैं, लेकिन अगर सुमित नागल की बात की जाए तो उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। और अगर क्रिकेट की बात की जाए,
मैं उसी पर आ रहा था, अमरीकी ओपन के बाद बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज़ की।
जी देखिए संदीप जी, कमाल की बात है कि जो इंग्लैंड क्रिकेट का मक्का जिसे कहा जाता है लॉर्ड्स, वहाँ जिस तरह से मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और अब अगर लीड्स की बात की जाए तो वहाँ पर भी इंग्लैंड की हालत अच्छी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से पलटवार किया है इस विश्व कप के बाद, इंग्लैंड हालांकि एक दिवसीय क्रिकेट का विश्व चैंपियन है, लेकिन आप देखिए कि जीत के लिए ऑस्ट्रेलिया के सामने जिस तरह से 359 रनों का लक्ष्य है, थोड़ी देर पहले 9 विकेट गिर चुके थे, 310 रन थे। हालांकि बेन स्टोक्स पे 86 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने जॉन लीच खेल रहे हैं, अभी उनका खाता नहीं खुला है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इंग्लैंड केवल जीत के लिए 1 विकेट दूर है, और जिस तरह से उसने पहला टेस्ट मैच जीता था और अब इस मैच पर उसकी पकड़ है तो ऐसा बड़ा मुश्किल लगता है कि उसकी पकड़ से जो इंग्लैंड की टीम है वो किसी तरह से बच पाएगी। हालांकि तारीफ़ करनी होगी इंग्लैंड के कप्तान जॉन रूट की, जिन्होंने 77 रन बनाए, जॉन डेले ने 50 रन बनाए, लेकिन अगर टीम हार जाए तो फिर कप्तान की ये पारियां किसी रूप से याद नहीं की जाती, क्योंकि अकेला संघर्ष यादगार नहीं बनता।
और आदेश जी, भारत का मैच भी चल रहा है वेस्ट इंडीज में, उसके बारे में भी बताइए।
देखिए भारत की पकड़ तो वहाँ बहुत ही मजबूत है क्योंकि आज खेल का चौथा दिन है, 316 रन भारत के खाते में इस लिहाज से जुड़ चुके हैं क्योंकि भारत को पहली पारी के आधार पर 75 रन की बढ़त मिली थी। थोड़ी देर पहले अजिंक्य रहाणे 70 और हनुमा विहारी 31 रन बनाकर खेल रहे थे, और दूसरी पारी में भारत का स्कोर था 4 विकेट खोकर 241 रन। हालांकि आज भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही क्योंकि विराट कोहली अपने कल के 51 रन के निजी स्कोर पर जॉन कैम्पबेल के हाथों रोस्टन चेज की गेंद पर कैच आउट हो गए, और कल केएल राहुल ने संभल कर खेलते हुए 38 रन बनाए थे, मयंक अग्रवाल ने 16 और चेतेश्वर पुजारा ने 25। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच एटिगा में जो पहला टेस्ट मैच है चौथे दिन, भारत निश्चित रूप से वेस्टइंडीज़ के मुकाबले काफ़ी भारी है।
आदेश कुमार गुप्त से खेल समाचारों के बाद कुछ ही देर में भारत में बजेंगे रात के 8:30 वक्त होगा कार्यक्रम के समापन का, लेकिन पहले मुख्य समाचार एक बार फिर सुनते हैं गुरप्रीत सैनी से।
समाचार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का दिल्ली के निगम बोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उन्हें अंतिम विदाई देने पक्ष और विपक्ष के कई बड़े नेता पहुंचे। जेटली का लंबी बीमारी के बाद दिल्ली के एम्स अस्पताल में शनिवार को निधन हो गया था। भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने स्विट्जरलैंड में चल रही विश्व चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। एक तरफा रहे मुकाबले में उन्होंने जापान की खिलाड़ी नोजोमी ओकुहारा को 21-7 के अंतर से हरा दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि G7 देशों के नेता ईरान परमाणु समझौते को लेकर मतभेदों के बावजूद ईरान के मुद्दे पर साझा रुख अपनाने के लिए तैयार हो गए हैं। मैक्रों ने कहा कि समूह का कोई भी देश ये नहीं चाहता कि ईरान के पास परमाणु हथियार हों। उन्होंने कहा कि सभी देश क्षेत्र की शांति और स्थिरता को खतरा पहुंचाने वाले कृत्यों से बचने के लिए प्रतिबद्ध है। BBC समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम का संपादन किया रेहान फजल ने और तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे कपिल देव सिंह। अगला प्रसारण नमस्कार भारत भारतीय समय अनुसार सुबह 6:30 बजे। फिलहाल संदीप सोनी के साथ समस्त सहयोगियों को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।